ऐसा कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं इनका तो मोतिया बंद हो रहा है, तत्व ज्ञान नहीं मिला। नर नारायण देही पाकर कटिया न जमका फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही दग है वाकी जंदरे। नर नारायण देहे पाके ज कटिया न यम का फंदरे। अगर ये नर परमात्मा, नर नारायण परमात्मा भी नर जैसा है, इसलिए नारायण परमात्मा को कहते हैं। और कहते हैं भगवान ने अपने जैसा सुंदर शरीर तुम्हें दे दिया, नहीं तो कुत्ते के सुअर से अपनी तुलना करके देखो मनुष्य की क्या आवश्यकता थी भगवान ने मनुष्य शरीर देने की। इसलिए दिया था कि तुम इसमें कुछ सदगुण उत्पन्न करो, ये पशुओं जैसे ही कर्म पक्षियों जैसे ही करते रहोगे, राग द्वेष खींचा ताणी है और प्रजनन क्रिया में ही लगे रहोगे, क्या कुछ और भी क्रिया जो मनुष्य जीवन की है ये भी करो साथ में। तो क्या बताते हैं, नर नारायण देहे पाकर कटिया ज कटिया न जमका फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही धर्ग है द्वा की जंदवे जंदरे। के जिसने ये वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं पहचाना उसके जीवन धिक्कार है उसका जीवन। ये मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पा करके तुम भक्ति नहीं करोगे तो फिर कौन से जीवन में करेंगे हम, ये विचार कीजिए। ऐसा संत हमें जगाते हैं अपने बच्चों को, हर प्रकार की वाणी सुना सुना के ना जाने कौन सी बात किसके लग जावे। अभी इतने सत्संग सुनाया जाता है तो ये ऐसा है जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए कई कांटे ही डाल लिया करें, गुच्छा सा कांटों का, कोई इधर मुंह किसी का इधर मुंह, वो 20-25 होते हैं। तो उसको रस्से से बांध कर उस कुएं में ऐसे डालते रहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं तो ना जाने वो कौन से में फंस कर उलझ कर आ जावे। तो ऐसे ये सत्संग बार बार नाना प्रकार के तरीके से सुना जाता है, ना जाने कौन से भगवान आत्मा के कब यह बात सुभ जा और कब से इसका उत्थान प्रारंभ हो जा। तो क्या कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म रट अविनाशी जो भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, रटे यानी उसमें पूर्ण परमात्मा में भक्ति करें, कति समर्पण करके और भजन करे गोविंद रे, और कैसे करे भाव भक्ति से अंतःकरण से। ये नहीं लोग दिखावा ऊपर तो मंत्र करना ही करना है, मंड जा फटाफट, ये नहीं, भाव अंदर से उसकी कसक बनावे, अंदर से परमात्मा की तड़प बनकर भजन किया जावे, उसको भाव भक्ति कहते हैं, यानी एक विशेष भाव खो करके। कबीर साहब कहते हैं, साईं यो मत जानियो ये प्रीत गट मम चत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं जीवित सुमरूं नित। अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं भजन करने की। कहते हैं यूं ऐसे मजाक से मत भक्ति करियो, ऐसे मत जानना भगवान के नाम को, फिर हमारे हृदय से भगवान का वो आस्था हट जाएगी। परमात्मा मरूं तो अंत समय में मरूं तो तुझे सुमरता हुआ ही मरूं मालिक, और जीवित रहूं तो नित तेरी याद कसक के साथ करूं। तो अब यहां आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं कि जब भाव भक्ति जा हृदय होई तो फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे, उसके सामने सुरपति यानी देवताओं का राजा इंद्र भी फेल है। जब आपके अंदर सच्ची लगन और सच्ची अंदर से उमंग और एक विशेष कसक आती है प्रभु की भक्ति में, वो जो लहर आप में बनगी, कहते यहाँ का कोई सुख आपको अच्छा नहीं लगेगा और ना आपको कोई धन की आवश्यकता महसूस होगी, केवल कल्याण चाहिएगा। तो यहाँ कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी जो भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे, लक्ष 84 बहे जात थे सूटा गंदा अंडरे, तत नाम सतगुरु को दीन्या जाय मिले सुख सिंदरे, इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंदरे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। अब जैसे बहन मीराबाई जी अपनी सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करागी और जग में उदाहरण बनगी, जब तक पृथ्वी रहेगी मीराबाई का नाम बना रहेगा, जब तक ये युग रहेगा मीराबाई का नाम बना रहेगा। तो कहते हैं कल्याण अपना करवाया और दुनिया में प्रशंसा की पात्र बनी। रावण ने अपना सर्वनाश कराया और दुनिया में निंदा का पात्र बन गया। तो ऐसे शुभ और अशुभ कर्मों का अंतर होता है। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद्रे। अब ये मन कब बकवाद सोचा, जब ये उठाली हो जा, जब इसको हम ढीला छोड़ देते हैं, जब ये बिल्कुल निकम्मा हो जाता है, बैठ जाता है, तो ये बकवाद सोचा करे। तो परमात्मा कहते हैं इसको उधर जाने नहीं दे। सुबह अपना नित्यनेम है, उससे पहले आंख खुलते सांस का सिमरण है, फिर मंत्र करने लग जा, फिर भगवान की कोई चर्चा शुरू कर दे, या अपनी कोई कैसेट सब इसकी प्रवचनों की लगा दे, या फिर नाम के सिमरण पर लगा रहे। कहते हैं फिर ये इंद्रियों के कर्म जो है ये आपको दुखी नहीं करेंगे और फिर ये आपको हानिकारक नहीं होंगे। इंद्री कर्म ना लगे लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद्रे। निर्द्वंद माने कति कसक के साथ एक ही परमात्मा की तरफ हरदम उसी में लौ लगी रहे। तो फिर उससे दो फायदे होंगे, एक तो तेरी मुक्ति होगी और फिर गरीब दास जग कीर्ति होगी। जब लग सूरज चंद्रे और जब लग पृथ्वी रहेगी, कहते हैं जब तक तेरा गुणगान का उदाहरण दिया जाएगा, जैसे ध्रुव प्रहलाद अपना कल्याण करवा गए सच्ची लौ ला के और हमारे लिए उदाहरण बन गए, आज तक उन पुण्य आत्माओं के गुणगान किए जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्चे सच्ची भक्ति कीजिए। क्या कहते हैं, मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं सुनो शब्द परसंगरे। दैने गंगा बामे जमना जमना मद सरस्वती रंग वे रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी पल पल पर भी अंगरे। काशी करवत काशी करोत का हेले वे बिना भजन नहीं ढंगरे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सतसंगरे। क्या बताते हैं कि मन मान सरोवर गंगरे, मान सरोवर के जो हम सतलोक में जो स्थान है वो मान सरोवर है और दूसरा ये सत्संग रूपी मान सरोवर है। इनमें चलिए आप और इसके इसके द्वारा उस वास्तविक मान सरोवर को प्राप्त करेगा। ये भी एक सरोवर है, यहाँ आप हंस हो राम नाम की मोती आप चुग रहे हो। यहाँ पर सत्संग में हंस ही आ सकता है, बुगला नहीं टिक सकता, क्योंकि यहां हंसों की खुराक है बुगले की नहीं है और शक्ल दोनों की एक जैसी ही होती है। बुगला मच्छी खाता है और इस मानसरोवर में ये विकार नहीं है, यहाँ केवल राम नाम की चर्चा और ये मोती है। इसमें हंस ही टिक सकते हैं, कौवा और बुगला नहीं टिक सकता। तो यहां इसलिए बता रहे हैं कि इस ये सत्संग रूपी मानसरोवर से फिर उस वास्तविक सतलोक रूपी मानसरोवर यानी उस वहां जहां हंस रहेंगे हमारे वो प्राप्त करोगे। क्या कह रहे हैं, मान सरोवर मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं सुनो शब्द परसंगरे। यानी सत्संग सुनो, सत्संग रूपी मान सरोवर मां के, और जहां से तुम आए थे बिछुड़कर वहीं ले चलेंगे तुम्हें, वहीं मिला देंगे। इस यही तरीका वहां जाने का। फिर कहते काशी क्रोध काहे ले वे, हाँ दैने गंगा बामे जमुना मद सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे। अब जैसे जो हमने आपको मंत्र दिया है ये श्वास से सिमरण कर, ये श्वास से जो सिमरण चलता है ये दैनासुर तो ये इला इसको पिंगला कहते हैं और बाया को इला कहते हैं। तो इसको इस एक को जैसे दाया है इसको गंगा कहते हैं, बाएं को जमुना की संज्ञा दी है, और तीसरा अंदर इनके अंदर से जो तीसरा द्वार इनके मध्य के अंदर है उसको सरस्वती की संज्ञा दी है। कहते तुम यहाँ इस पृथ्वी वाली गंगा जमुना मना उड़ज के अपना सांस का सिमरण करके उस तीसरे उस द्वार को साफ करो। ये जो सिमरण आपको श्वास का दिया है ये आप कीजिए, इससे क्या होगा कि जो वो तीसरा जो द्वार है सुषुम्ना वाला वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और इस सिमरण से वो खुलता है, फिर वो बंद होता है ऑटोमेटिकली। जब जन्म होता हमारा तो उसको खोलने का तरीका इस श्वास का सिमरण है। इस सिमरण से वो अपने आप ऐसे रगड़े लगेंगे कि वो आपका साफ हो जाएगा। तो जिसने श्वास का सिमरण मिल गया है, अब पहले वो बीड़ी पीते थे, अब उनको धुआं नहीं सुहाता, क्योंकि आपका सुषुम्न द्वार साफ हो गया। आप चक्कर आने लग जाएंगे, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप करते रहिए इसमें, आप ये ना सोचना कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें कुछ ये बहकाने वाले बहुत मिलेंगे। अगर कोई दिखाना होता और अब दिखाने से आपका कल्याण होता तो दास आपको सबसे पहले कर देता उस काम को। आप किसी की बातों में नहीं आना, उनको कुछ पता नहीं, कह कह का ज्ञान नहीं है। दास जैसे ट्रीटमेंट दे ऐसे आप उपचार कराइए और फिर सतलोक चलिए। बहुत भ्रम भटक लिए हम इन मनमुखी लोगों की बातें सुन सुनकर, हम बहरे हो चुके हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जो महापुरुषों ने परमात्मा पाया है उनके प्रमाण आपके समक्ष हैं। उन्होंने कभी ऐसे हठ योग ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे से हम नहीं किया, केवल एक ही मंत्र, एक ही विधि, एक ही तरीका और एक ही भगवान है। तो यहां बता रहे हैं, वहां पर तुम्हारे कन्विश कुशमल सब मोक्ष होते हैं, सभी भयंकर से भयंकर पाप भी तुम्हारे इस मंत्र से, इस विधि से, इस मानसरोवर में आने से। कुछ तो पाप हमारे सेवा से कटते हैं, कुछ दान से अक्षीण होते हैं, कुछ दर्शन से होते हैं, कुछ परमात्मा की कथा सुनने से होते हैं, कुछ हवन के करने से, जैसे हम आपकी ज्योत लगती हैं। तो इस सारा मिला करके हम हमारी ये सब संस्कार और पाप कर्म कटेंगे। और कुछ जो बिल्कुल भयंकर पाप है वो सत्य नाम से कटेंगे, आपके अक्षीण होंगे। फिर बताते हैं, काशी करवत काहे लेत है बिना भजन नहीं ढंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संगरे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है कि परम संत का, पूर्ण संत का संग करो, उसके सत्संग में जाओ। और काशी में काहे को क्रोध लेकर तो अपनी मुक्ति मानते हो इन मूर्खा के बकाए हुए। काशी में क्रोध लाया था, अभी कथा सुनाएंगे आज उसी प्रसंग पर। तो कहते काशी में क्यों अपना गल कटवा नादन, अरे सुनो करो सुनो शब्द प्रसंग रे। काशी क्रोध काहे ले वे बिना भजन नहीं ढंग रे। काशी क्रोध क्यों लेता है बिना सत भक्ति के, तेरा कितने ठिकाना कोई ना, कोई ढंग नहीं, कोई लाभ नहीं। और कोटि ग्रंथ का, करोड़ ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संग रे। पवित्र गीता जी कहती है कि उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर ले अर्जुन, जो उस परम तत्व के जानने वाला है। मैं नहीं जानता, गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में। पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में कोई साकार बताता है प्रगट होने वाला, कोई निराकार बताता है भी वो कभी जन्म नहीं लेता, आदि आदि करके व्याख्या करते हैं। पर उसकी भक्ति और उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उससे सुन। ऐसे पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और वो सारी सृष्टि का रचनहार है, और उसकी खबर, उसके पाने की विधि किसी बा खबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो ये वही प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहब कह रहे हैं कि काशी करवत काहे ले ही बिना भजन नहीं ढंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संगरे। जब तक ये संत नहीं मिलेगा इतने आपका मुक्ति मार्ग प्रारंभ भी नहीं हो सकता। बिन ही पंखों उड़े गगन को चाले चाल विहंगरे, दिव दृष्टि तो दर्शन दर्श करते हैं हरदम कला उमंगरे। कि जब तू यहां से चलेगा परमात्मा तुझे ऐसे ले जाएगा जैसे बिन पंखों के, बगैर किसी उसके ऐसा जाएगा सेकंड में, काल को तो पता भी नहीं लेगा जीव गया कौन से रस्ते थे। ऐसे तरीके से मालिक आपको ले जाएगा। कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। फिर कहते हैं चुंबक हमारा रूप है और ये लोहे रूपी प्राण, और धर्म राय तेरी बंद ते ले उड़ू अचान। कि मैं ऐसे ले जाऊंगा अपनी प्यारी आत्मा को, पहले इनको तैयारी करवाऊंगे, इन्हें पता भी ना लगने दे, यहाँ पर कोई महसूस नहीं कर सकता ये परमात्मा है या क्या संत है, क्योंकि इस काल में भी धोखे में रखते हैं परमात्मा। इसलिए तो आदरणीय गरीबदास नानक साहब जी ने कहा ये ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना होता बार ये दानक रूप रहा करता है। कहते ये ठगवाड़ा, ये किसी को पता नहीं लगने देता, ये इसको कोई नहीं पहचान सकता, ये भगवान बैठा, लोगो भगवान बैठा, पर कौन सुने, क्योंकि हमारी थ्योरी बदल रखी है परमात्मा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता परमात्मा ऐसा होता है। तो यहां क्या बताते हैं, देव दृष्टि को दर्शन करते हैं हरदम कला उमंग रे, फिर आपकी जो देव दृष्टि बनेगी उससे आपको प्रभु के कभी कभार दर्शन होया करेंगे। आप आंखें खुली हैं चाहे बंद हैं, एकदम एक पलक में कुछ झलक आ जाया करेगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं जिनको नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, अपनी भक्ति कीजिए, ये तो केवल दर्शनार्थ है, बाकी मुक्ति का मार्ग तो सिमरण और ये साधना ही, ये कमाई आपकी पूरी करनी पड़ेगी, यहां से कर्ज मुक्त होना ही पड़ेगा। अजप्पा जाप कते प्रानंद निपारक डीजे, मूल मंत्र ओम अंग्रे, गायत्री गलतान है सो हम सुरत सुहंग्रे, अजप्पा जाप जप निस्वासर जीत चलो जम जंग्रे। अजप्पा जाप, ये सिमरन जो सतनाम का है इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं, इसको सतनाम के जाप को अजप्पा जाप भी कहते हैं। अजप्पा जाप जपो निस्वासर जीत चलो जम जंग्रे, गरीब दास दर्शन देवा के देख भया मन दंग्रे। गरीबदास साहब जी कहते हैं जब विधि मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे मैंने भी ऐसे किया तो उस परमात्मा के दर्शन करके मेरा तो मन चित्र यानी बहुत ही अचरज में पड़ गया, देख मन भया दंग रे, दंग रह गए हम तो सचमुच जो बता के गए थे। फिर उसी विधि से एक बार तो स्वयं दिखाया उनको, फिर दोबारा की सिमरण कर गरीबदास परमात्मा ने कहा, तो कहते मैंने फिर उनकी बताए अनुसार साधना की तो भाई वो न्यो का न्यो भगवान देखकर मैं तो दंग रह गया, और तुम भी ऐसे ही कीजियो। अब आपने सुना कि काशी करवत काहे लेत हो, काशी करवत काहे लेत हो, बिना भजन नहीं ढंग रे, सत भक्ति के बिना कति ठिकाना नहीं भाई। काशी बनारस में इन नकली गुरुओं ने यानी ज्ञानहीन प्राणियों ने, इन ऋषियों ने ब्राह्मणों ने के अफवाह फैला रखी थी कि भी जो काशी में शरीर त्यागता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और दूसरा एक विशेष स्थान मगहर, मगहर है इस गोरखपुर जिला से 25 किलोमीटर की दूरी पर। अब वो मगर जो स्थान है, गांव है, नगर है, अब वो जिला कबीर नगर के अंतर्गत आ गया, पहले उनका पुराना बस्ती जिला था, अब बस्ती जिला को डिवाइड कर दिया, दो हिस्से बना दिए, उसमें आधे का नाम कबीर नगर जिला रख दिया उत्तर प्रदेश में। तो उस मगर के एक स्थान है, एक नगर है, उसका उसकी सीमा में कहा करते पंडित लोग, ब्राह्मण लोग कहा करते जो मगहर मरता है वो सीधा नरक जाता है और गधा बनता है, गधा की जूनी से उसकी 84 लाख योनियां प्रारंभ होती हैं, इसलिए कहा करते कि मगहर में मत मरियो, मगहर में मत मरियो। काशी के तो पंडित को कह मगर मरो ना कोई, वह तो पृथ्वी सूची ना ही, त्रिशंख पड़ा बिल्लाही। उसको क्या बताया कि भगवान शिव जी ने कहते हैं मगहर क्षेत्र को साप दे रखा है कि वहां जो मरेगा वो नरक जाएगा, गधा बनेगा, और काशी जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब बोले भाले हिंदू अपने पूर्वजों ने श्रद्धालुओं ने सोचा मात पिता का समय निकट आया हुआ है, क्यों ना अपने गुरु जी के वहां काशी बनारस में छोड़ दें, इन्होंने इनको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अब उन नादानों ने ये पंगा मोलते ले लिया, फिर वह समस्या होगी क्योंकि लोग अपने माता पिता को वहां छोड़ आवे और उन गुरुजियों को वो 10 रुपये उनका खर्चा होता, वो 20 रुपये मांग लेते महीने के, तो 20 रुपये दे देते कि मेरा गुरु पिताजी 2 साल भर के हैं, 6 महीने के हैं, कि ये कितने दिन रहेंगे और बार बार बस रह रहकर संभालते रहते। उन्होंने ये पंगा मोल तो ले लिया, फिर आई योगविद घने हो गए, इनको रोके कहां, तो एक नई सखी मोर तैयार कर दी। कहते हैं इस गंगा के ऊपर एक हत्था बना दिया मनुष्य काटने का, एक हत्था बना दिया मनुष्य काटने का गंगा के किनारे, बहुत सुंदर नुआरत सी बना के और अंदर उस पैड़ियों के नीचे घाट सा बना दिया, पैड़ी बना दी और उसके अंदर एक गुप्त करौंत लगा दिया कि उसमें कैसे गोल गोल आर्च बना दी, उसमें आदमी की गर्दन रखवा दे नीचे और ऊपर से उस करौंत का हैंडल दूर बना दिया कंट्रोल करने के, वो भी ऊपर से छाप के गुप्त बना ली, किसी ने पता ना लगा। वो ऐसे संकेत करते थे जिसको उस गर्दन काटनी होती थी, आवाज लगाते थे हे भगवान हे परमात्मा ये आपकी आत्मा आपके चरणों में आ रही है इसको स्वीकार कीजिए, तो इस आवाज से वो क्रोध कंट्रोल करने वाले उसको चला देते थे। वो कैसे करते थे कि जब उसकी गर्दन वहां रखवा दी ना जहां क्रोध का निशाना था ऊपर ताया करता उस दीवार के अंदर से तो वहां रखवा देते थे और फिर बाहर आकर आवाज लगाते थे हे भगवान आपकी आत्मा आपके चरणों में आ रही है इसको स्वर्ग में स्थान देना, तो वो समझ जाते थे उसके गुर्गे, वो चला देते उस क्रोध को छोड़ देते और वो आते ही उसका शीश काट देता और उसको दे दे भाई ये तो गया स्वर्ग में। अब ऐसे लाइन लगी भाई जिन्होंने शीघ्र जाना है भगवान के दरबार में, एक नई परमात्मा का आदेश हुआ है कि वो क्रोध से गर्दन कटवा लो और स्वर्ग पहुंचो। अब बुजुर्ग आदमियों ने सोची भाई कल भी मरना आज भी मरना, अपने बच्चों से कहने लगे बेटा आप इनकी फीस दे दो गुरुजी की, हमारा नंबर आ जाएगा, हम शीघ्र चले जाएंगे, हम भी दुखी हो रहे हैं यहाँ वृद्धावस्था में और स्वर्ग जाना ही है, कल जाना है इसे आज जाना है। इतनी बोली आत्मा थी उनका ऐसा दुरुपयोग किया नादानों ने, ऐसे वो क्रोत लेने लगे और कहते हैं फिर भी मुक्ति को ना, इतनी इतनी सेक्रीफाइस कुर्बानी करने के बाद भी अगर चल ऐसे भी भगवान मिलता हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे भी स्वीकार करने को तैयार हैं, पर ये मिले तो कोई ना नु? कहते बिना भजन नहीं ढंग वे, ये भक्ति करके यहां से पीछा छुटवाओगे अपना ऋण मुक्त होगे तो वहां जाया जाएगा ना को स्वर्ग ठिकाना और न ही ये करो तो लेना ही परमात्मा पाना है। और कबीर परमात्मा क्या कहा करते कि भाई सत भक्ति करने वाला सही साधक चाहे काशी मरो और चाहे मरो मगर में वो अपने यथा स्थान पर जाएगा जहां की उसने भक्ति की है। ये तुम्हें गुमराह करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये लालची लोग हैं तुम्हारे गुरु, ये अच्छे आदमी को ना। अब उन गुरुओं की चला करती क्योंकि हम उन्हें शिक्षित मानते थे, हम उनको विद्वान मानते थे और अब परमात्मा को अशिक्षित उन्होंने घोषित कर रखा था, ये पागल है ये क्या जाने, इसने संस्कृत आती नहीं, शास्त्रों के विषय में ये क्या जाने, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम शास्त्रों में लिखा हुआ तुम्हें बताते हैं। तो हमारा ये मानना उन भोली आत्माओं का स्वाभाविक था कि गुरुजी तो वही ठीक है शिक्षित हैं और कबीर तो एक अशिक्षित है, शास्त्रों का तो भेद इसको नहीं है, हाँ ठीक है संत ये भी है क्योंकि उनके काम सर जाया करते थे, इन सिद्धि तो है, यहां तक सीमित कर दिया। अब उधर से परमात्मा ने एक लीला की, क्योंकि हम अपने भगवान की बातें कम मानते हैं, गुरुजी की बातें कम मानते हैं, संसारिक लोगों की बातों को ज्यादा जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। कैसे जैसे ये बोली भारी बहन बेटी भाई नाम लेकर जाते हैं और फिर उस दिन से वो अपनी ज्योति अलग से लगाते हैं, उन देवताओं की मूर्तियां उठाकर या तो स्वाहा कर देते हैं या जल प्रवाह कर देते हैं या यहाँ आश्रम में रख जाते हैं और फिर कोई आते हैं जैसे तीज त्योहार श्राद्ध प्राद हमारे सेवक नहीं करते, तो दूसरा आकर कहता है कोई कहेगा कि भाई तुमने आज त्योहार ना मनाया, ये श्राद्ध ना निकाले, अकाम ना निकाला करे, गुग्गा भी ना मनाई तुमने तो अकाम नहीं मनाया करते, हमने उपदेश ले लिया। तो वो आके कह देगी, डरा देती है, ये ऐसे नो थोड़ा छोड़ा करते हैं, एक ना ऐसे छोड़े थे उसका बेटा मर गया, अब नू डरा दे फिर हमारा गिगी बन जा, भी सचमुच कर बात बिगड़ जा। और ये भी कहती, हमने भी तो नाम ले रखे, हमारे गुरुजी तक कुछ ना छुटवाते, तेरे गुरुजी बताना किसे हैं। तो इस प्रकार वो नादान आत्माएं हमारे शिष्यों को भी मिसगाइड कर देते हैं। एक समय एक भक्त ने उपदेश लिया और कितना कहर था उनके ऊपर वर्णन नहीं कर सकते, एक पुस्तक में भी हमने छिपाई छपवा रखी उसकी हिस्ट्री। जींद में पटियाला चौक पे एक भक्त की दुकान, वही उनका पीछे मकान था, रमेश नाम है उनका, रमेश जैन। तो उनके दो जुड़वा लड़के थे और एक लड़की उसमें 10-12 वर्ष की होगी और एक और उससे थोड़ी छोटी थी, लड़के उसमें वो 5 वर्ष के होंगे दोनों ही। दोनों लड़कों को तो इतनी बीमारी रहे कि निधि 5 दिन तो घर पर, 10 दिन मेडिकल में रहा करते, और बड़ी लड़की का दौरे पड़ा करते, और उस बेबे का श्वास का रोग था उसकी रमेश जी की पत्नी के। तो उसने पता लगाया, हमारे एक सेवक ने उनको बताया, पूरे परिवार ने उपदेश ले लिया और उनको कहा, बेबे और साधना नहीं करोगी, ये पहले शर्त है भगवान की, और तुम हो बनिए लोग, फिर तुमने समाज भी कुछ कहेगा, इधर उधर की बातें मारेंगे तो तुम्हें कति लाभ नहीं होगा, हमारी तरफ से हानि होगी नहीं, लेकिन जैसे बिजली का कनेक्शन कट गया, पंखे चलने बंद हो जाएंगे, हैं तारा आटा नहीं पिसेगा, वो कनेक्शन कटने से हानि होगी, मतलब और विशेष हानि नहीं होगी, यो काम तुम्हारा सरेगा नहीं, तुम्हारा दुख दूर होगा नहीं। न्यू बोली जी, हम तो महा कष्ट में है, कति दुखी हो लिए, और जो कहोगे वही करेंगे, हमारा तो अंत समय है, कमाते हैं 200 रुपए, खर्चा हो गया 50 रुपए का, हम तो कर्जा और हो गया। उपदेश ले लिया उन पुण्यात्माओं ने और ऐसी कृपा बख्शी परमात्मा ने, उन बच्चों का भी रोग खत्म, लड़की के दौरे समाप्त, और उसका दमा नहीं रहा उस बहन के। तो ऐसे वो 6 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ रही, 6 महीने के बाद उसको फिर गड़बड़ होगी, न्यो की न्यो सतीथि आ गई पूरे परिवार की, बच्चे भी बीमार, छोरी के दौरे पड़ने लग गए, उसको दमा की शिकायत होगी। एक सेवक था वो, उसने पूछा भी, वो भगत जी उसके पास गया, कभी ऐसे ऐसे पता नहीं, हमारे तो 6 महीने तो ठीक रहे और कति कोई दर्द नहीं था भाई, ऐसे निहाल हो गए थे, अब फिर दिक्कत आ गई। तो कहा भी गुरु जी को बताएंगे, अभी यहाँ आए जींद में तो उनसे अर्ज करना, तुमने कोई गलती की है कि ना, गलती नहीं करी कति भी, वैसे तो हो नहीं सकता ये काम जो जब तक हम कोई गलती नहीं करेंगे। वो भगत जी कहे कि ना कोई गलती नहीं की। तो वो भगत जी हमारा सेवक उस रमेश के साथ उनके घर चला गया, तो उस बहन से भी यही कहा, भी गलती बिना थे बहन ये दुख हो नहीं सकता, तूने कोई त्रुटि की है तो दोबारा क्षमा याचना मांग ले। बोली ना भाई, मैंने कति कोई गलती नहीं करी। तो वो घूमता घूमता उनके पिछले वैसे कुदरती पीछे ने वैसे निकल गया, कोई बाथरूम करने गया था कैसे, तो वहां देखा तो गुग्गा की पूजा कर रखी। तो उसने पूछा, यू के लटोटर कर रखा तुमने भाई, ये तो गुग्गा की पूजा करी थी वैसे। अरे तेरा गजब, ये गुग्गा तो बढ़ गया थारा फेरी, ये गुग्गा तो काट गया था, ये गुग्गा फेर आ गया था ना, फिर बुला लिया पूजा करके। तब उन्हें बोली, अपने परमात्मा से गुरुदेव से दोबारा नाम पूछ लो, तर्ज करो कि एक समस्या कैसे थरियल होगी, भैया बताया गुग्गा के ऊपर पूजी इतने। बोली भाई के बताऊ, एक रिश्तेदार आएगी इन यही रहते हुए, और बोली आज गुग्गा वो नहीं करती कि तू प्रोग्राम से मैं नाइटगी, अकल तक गुग्गा है न्यू करेंगे मैं नाइटगी। उसने कहा हम ना करें, हमने तो नाम ले रहा क्या। उसने इसी ड्राइव में था, मैंने सोची कर ले गुग्गा के दिक्कत आवे, गुग्गा में क्या फर्क पड़े, और तो पूजा हम सारी कर ही रही है गुरुदेव वाली। तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुर पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। सौ वर्ष या साधना करके हमारी, जब एक दिन भी गलत साधना कर दी उसी दिन आपका काम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा भी गुरु जी आओ तो अक्षमायाचना करो, फिर जैसे क्या होगा देखो। वो गड्ढे डर गए फिर, अगे तो फिर हुआ बीमारी आ गई, तो फिर हम जींद आश्रम आए तो सारा परिवार आया, फिर सारी कहानी बताई जी हमारे से गलती होगी ऐसे ऐसे। एक न्यू बोलिया, मैं बोला वे तुम कमाल की बात, नाम देने से पहले कितने समझावा, नाम देने के बाद भी बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि यह गलती मत कर दियो। तो फिर उन्होंने दोबारा उपदेश दिया, उसके बाद आज तक लगभग 10 वर्ष हो गए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल नू चीन ना बूझे सब जोगेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। संसारी की गल में, संसारी की बातों को तो तुरंत मान ले, हम इतना सत्संग करें 100 प्रमाण बतावें हुए हुए सुख गिनवावें और हमारी बात सारी फेल कर दे एक 2 मिनट में कोई बहन भाई आनुपासी आके, तो ये नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा कहते थे ये साधनाएं मत करो, ये तुम्हें हानिकारक है, कति लाभ नहीं देंगी, भूत पूज के भूत बनोगे, नर जीवन पर लय हो जाएगी। पवित्र गीता जी 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यही लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, भूत पत्र पूजते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये कनागत काटे फूल उठावे, ये पिंड भरवावे, ये सारे भूतों की पूजा है, ये करने वाले तुम भूत बनोगे। और भगवान कहता मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, यानी प्रभु की साधना करने वाला प्रभु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाहते हैं कि तुम साधना हमारी नहीं मानते, अपनी मनमुखी की तरफ शीघ्र दौड़ जाते हो। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। अब परमात्मा से सुख घने हो रहे थे इसलिए उनको भगवान मान रही थी, और लेकिन कोई अनजान व्यक्ति कह देता उनकी भी मान लेते थे, भगवान तो है नहीं तुम्हारा गुरुजी। हाँ ठीक है, सिद्धि युक्त संत है, छोटी मोटी सिद्धि सब में हो जाती है, भगवान तो राम था श्री कृष्ण था। यानी ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे नहीं हो पा रहा था, जबकि 64 लाख शेष हो जाना आज से 650-550 वर्ष पूर्व कोई बालकों का खेल नहीं था। 64 लाख शेष हिंदुस्तान में, जबकि पूरे हिंदुस्तान की जिसमें पाकिस्तान बलोचिस्तान अफगानिस्तान तक इसी में थे, कोई यानी 4 करोड़ आबादी होगी उसमें मुश्किल से। जहां आज से उस समय 300 वर्ष पहले जहां 40 घर थे, आज वहां पर सैकड़ों घर हो रहे हैं। तो ये देख लो कितना प्रतिशत बढ़ गया, 100 से भी 500 घर हो गए। तो उस समय कितनी आप जनसंख्या होगी और उसमें से 64 लाख परमेश्वर के शेष हो जाना, ये परम शक्ति का प्रतीक है। लेकिन भगवान नहीं माना, ये विश्वास दृढ़ नतन संतों ने होना नहीं दिया ऋषियों ने कि ये मालिक है। और जब तक हमारा अटूट श्रद्धा और बिल्कुल भगवान के तुल उसमें श्रद्धा नहीं होगी अपने गुरुदेव में, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, किया हुआ कर्म तुम्हें अवश्य मिलता रहेगा, मुक्ति शेष रह जाएगी। एक समय क्या हुआ कि एक लड़की गणिका थी वैश्या, उस बेटी ने परमात्मा के वचन सुन लिए, सत्संग सुन लिया, उसको बड़ा अपने दुष्कर्मों का अफसोस हुआ और उसके जो है ना प्रायश्चित के लिए और उसके निवारण के लिए आत्म उद्धार के लिए कबीर परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु से कहा कि भगवान मैं बहुत निकम्मी आत्मा हूं, मैंने तो आपका सत्संग सुना, मेरी तो आत्मा धिक्कार रही है मेरे अपने आप को, हे परमेश्वर क्या मेरे जैसी तुच्छ जीव का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा बेटा नौका में चाहे घास रख दो और चाहे पत्थर, वो पार कर दिया करती है। सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते हैं, संत शरण में आकर पापी भी पार हो जाते हैं। अब परमात्मा ने अपने बच्चे एक जैसे प्यारे होते हैं, जैसे एक तो बालक टट्टी पेशाब करके अनजानपने में और सारे शरीर पर भी मल ले, मुंह पर भी लाग जा, कपड़े भी खराब कर रखा हो, अरे एक वैसे नहाया धोया बैठा हो तो माँ बाप ने दोनों पैरे लगा करे। वो खराब है उसने नहा धो के साफ, दो धा के साफ कर लेगा फिर सीने से लगा लेगा। अगर लाल कीचड़ में गिर जाता है तो उसका मोल खत्म नहीं होता। अब इतने प्यारे और निर्णायक वचन सुनकर उस लड़की ने सोचा है भगवान ये तो बात पिणगी, मुझसे सभी नफरत कर रहे थे, यहाँ आई थी सभी मुझे करड़ा करड़ा देख रहे थे, क्योंकि इनका भी दोष नहीं मेरा पाप गना, और भगवान ने तो सारा ही काम ठीक कर दिया, मेरा सारा ही वजन उतार दिया, उपदेश ले लिया और कहा बेटी अब आगे से बिल्कुल परमात्मा के चरणों में लगी रहना, अगर जैसे आप कहोगे प्रभु ऐसे करोगे। अब इस ये देखकर क्योंकि हम जो बेशक नाम भी ले रखा हमने, हम इतने निर्मल नहीं हो पाते जितना संत करना चाहते हैं, जितना हम प्रयोग करते हैं साबुन का और पानी का इतना भी हमारा मैल छूटता नहीं पर छूटेगा, यही तरीका है। जैसे पहले धोबी ऐसे पटक्या करता उस कपड़े ने पड़ाक पड़ाक, तो वो दुश्मन नहीं था कपड़े का, वो मैल छुटवाया करता। तो आपको ये सत्संग रूपी चोट मार मार के अंदर से ये मैल निकाला जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम अपने दोष को नहीं देखते, दूसरों के दोष देखते हैं। तो सत्संग के अंदर संगत के अंदर ये सुरसराट शुरू हो गया, ये चर्चा शुरू होगी कि बे गुरुदेव ने तो गलती कर दी, इतनी निकम्मी लड़की को नाम दे दिया, सारी दुनिया थूका है, सबने कहे भाई बता देख लो थरे सत्संग में वैसा भी जान लाएगी। अब गुरुदेव तक तो पहुंचे नहीं पर अंदर अंदर सबके अंदर यह गलानी सी होने लगी। एकाद सेवक ने कह भी दिया कि जी ऐसे ऐसे बाहर वाले लोग कुछ भगत भी कहते हैं कि लड़की यहां आती है तो लोगों की जुबान खुल रही है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा सत्संग के माध्यम से समझाते हैं, क्या कहते हैं, कुश्ती हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा कह विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कोढ़ी भी हो ना भक्त उसे नफरत मत करना, वो साधना कर रहा है तो, और यदि वैसा तुम उसको वैसा मान रहे हो उसने उपदेश ले लिया है, अब वो बुराई नहीं करेगी, लेकिन तुम उस दृष्टिकोण से ही सोचते रहते हो, यही त्रुटि है। कहते हैं हो वैसा कह विश्वास चरण चित दीजिए, अगर वैसा को भी दृढ़ विश्वास हो गया नाम ले लिया है तो उसका सत्कार कीजिए भाई, अनादर मत कीजिए। ये गीता जी में कहा कि कितना ही महा दुराचारी प्राणी क्यों ना हो वो भी साधु तुल ही होता है, भक्त के तुल ही होता है, समझना चाहिए कि वो धीरे धीरे आकर अपने विकारों को त्याग देगा। अगर उसे तुम नफरत करोगे यहाँ नहीं आने दोगे तो उसको पता कैसे लगेगा अपनी बुराइयों का, वो कैसे उसको त्यागने में समक्ष होगा सक्षम होगा। तो इस तरह के काफी इस परमात्मा वचन किया करती थी। एक समय एक लड़की को पीट रही थी दुराचारिणी मान कहे, कहते हैं एक संत श्री ईसा जी वहां पहुंच गए और ईसा जी की शक्ति से उस समय के लोग बहुत परिचित थे। ईसा जी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो। उन्होंने कहा ये बहुत निकम्मी है, ये दुराचारिणी है, इसने यहाँ पर ऐसे जो है ना बड़ा बड़ा व्यवहार चला रखा है। ईसा जी ने कहा भी ठीक है इसको पीटने का तरीका मैं बताता हूं, इसको मारने का तुम सभी पत्थर उठाओ एक एक। सबने एक एक पत्थर उठा लिया और इस लड़की का वो पत्थर मारा जिसने कभी भी ऐसा विकार ना किया हो, और नहीं तो अभी यही खत्म हो जाओगे। किसी के हाथ में पत्थर नहीं रहा, तले छोड़कर खिसक गए सभी। तो परमात्मा कहते बुरा जो देखण में चला बुरा ना मिला कोई, जब मन खोजा अपना ते मेरे तो बुरा ना कोई। हम अभी इसी चीज के आदि हैं, हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपने को पीछे रख देते हैं, और जब हम अपने को टटोलेंगे तो हमें कोई बुरा नजर नहीं आएगा। इसलिए कोई बुरा भी है तो यही तो स्थान है सरोवर है जिसमें वो निर्मल होएगा, चाहे कोई शराबी है चाहे अफीमी है कोई चोर है कोई डाकू है। हाँ आना चाहिए, हमारी मर्यादा को निभाते हुए बैठे सत्संग सुनो, वरना जाने कब उसका उद्धार हो जाएगा। तो क्या कहते हैं नहीं माने, परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर हमारी बुद्धि कच्ची है, हम अपने मालिक पर विश्वास ना करके अन्य लोगों को महत्व देते ही रहते हैं। परमात्मा ने सोचा जब ये इनका विश्वास मेरे पर है ही नहीं तो इस वजन को उठाकर मैं नहीं ठाई फिरूंगा, अब इनको पिछोड़ देखता हूं, इनकी एक पिछोड़ मार के देखता हूं, जैसे गेहूं का पीसना कराया करे ना छाज में डाल के और ऐसे कर लेते हैं इसका, तो कनक रह जाती है, थोथा जो होता है वो उड़ जाता है। तो परमात्मा ने सोचा एक पिछोड़ लगा के देखता हूं कितने खरे हैं कितने खोटे हैं, इनमें परीक्षा लेता हूं। तो इसने परमात्मा ने क्या किया कि एक दिन उस लड़की से कहा, बेटी तू हमारे संग चलना और अपना पूरा हार श्रृंगार कर ले। परमात्मा ने कहा, बेटी तू पूरा हार श्रृंगार करके बिल्कुल सब गहने पहने पैर के और कल हमारे साथ चलना। अब लड़की ने कहा, पिताजी जैसे आप कहोगे आपकी बेटी वैसे ही तैयार है, ये शरीर आपका है, आप जैसे आपकी आज्ञा। लड़की ने अगले दिन पूरा श्रृंगार करके, और कबीर साहब ने कहा अपने सेवक रविदास जी से कि रविदास जी एक हाथी किराए पर दिया, वो हाथी किराए पर ले आया एक दिन के लिए, और कहा तू पीलीवान बन जाना हमारा, और ऐसे ऐसे सारी क्रिया समझा दी उसने। एक गंगा जल एक शीशी में डाल के बोतल में गंगा जल भर के, और लड़की को आगे रविदास जी तो हाथी आंक रहे थे, ड्राइवर थे, पीलवान थे, और बीच में लड़की बिठा दी, पीछे परमात्मा बैठ गए, लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और बोतल में गंगा जल डाल के और नो पीवर भरे बाजार में गए, घूम गए पूरे फुल बाजार जो काशी का पूरा आवागमन गणी थी। अब जुम सा देख रहे यो के चाला हो रहा सरेआम, कहते भाई यो काशी आला कबीर हो जुलाया कबीर, हम तो पहले कहा करते हो भाई गंदा आदमी है, वहां लड़कियां जाती हैं, ऐसा है वैसा है तक जाती है, ये देख लो प्रसिद्ध वैसा को लिए शराब पी का घूम रहा भाई। अब सारे आग की तरह ये फैलगी, दावानल की तरह बात चर्चा हुई, और कबीर साहब के शिष्यों को पकड़ पकड़ लिया, तुम के कहा करते, देख तुम्हारे गुरुजी, देख तुम्हारे क्या ये हम क्या पाखंड रच रखा इसने, ये देखो ये लड़की को लिए फिर रहा। तो वो नकली तो शिष थे, परमात्मा ने तभी तो चाहा कि वे क्यों सिर पर वजन रखा, तो क्या कहते हैं भाई मैं तो कदे कदे जाया करता, मैं तो कभी कभी जाता था, मैं तो एक दोस्त के साथ वैसे जाता था, मैंने गुरु ना बना रखा था। अब 64 लाख शिष्य ऐसे गए नरक में, ऐसे अपना कर्म बिगाड़ गए और भक्ति से वंचित रह गए। बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर कर्म वो बाटे सिर का बोझ। सब बड़ुआ बड़ुआ कह रहे हैं कबीर परमात्मा को, निकम्मा निकम्मा कह रहे हैं, कोई नहीं समझते ये कारण क्या है। वो तो अपने सिर तक निकम्मों का वजन उतार रहे थे कि अब पता लगेगा मैं भगवान हूं या शैतान हूं, इनके अंदर कितनी श्रद्धा मेरे प्रति है। 64 लाख शिष्य सब बगावत कर गए। उधर से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी बनारस पहुंचे हुए थे। परमात्मा उसी समय छेड़ा छेड़ा करते, उसी समय कार्य करते थे जिस समय सिकंदर लोधी वहां आया हुआ हो, और साथ में वो शेख तकी जो उनका धार्मिक गुरु था वो भी साथ आया हुआ होता था। इस तरह परमात्मा विशेष छेड़ा छेड़ी उसी समय करते थे, एक शायद ये निकम्मा भी मान जाए किसी तरह। अब काशी के नगर के हिंदू मुसलमान सब क्यों सिरमदर तो पहले हो रहे थे कबीर साहब उनके, क्योंकि उनकी पोल पाड़े थे, दुखी तो वो पहले ही से थे, वो दाव की तलाश में थे कि आज बादशाह आया हुआ है, यहाँ का राजा तो इनका शिष्य है, वो हमारी सुनता नहीं, बादशाह आए हुए हैं सिकंदर लोधी, और सब इकट्ठे होकर वही पहुंच गए हजारों, कोई हजार की संख्या में। अब पब्लिक को देखकर राजा का पैर नहीं होते, राजा ने सोचा भी क्या बात होगी, क्या कहानी है, पूछो, पता चला तो ऐसे ऐसे जी कमाल कर दिया उसने, तो जुल्म कर दिया, देखो सरेआम आज बहन बेटियों का बाहर निकलना जुल्म हो गया, हमारा तो हराम हो गया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कैसे जिएंगे इसे गंदे नगर में जहां पर सरेआम वैसा वर्ती होने लगी। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई कौन है वो कि वो कबीर है, और जबकि 100 कम से कम 50 प्रमाण देख चुका था वो सिकंदर लोधी अपने भगवान की शक्ति के, अपना दुख भी निवारण हो गया था, लेकिन हम कच्चे ही इतने हैं। अब सिकंदर लोधी ने पब्लिक के दबाव में कहा कि लाओ उसको पकड़ के अथकड़ी ला के। शेख तकी कहने लगे मैं दूंगा इसको सजा, दे दे भाई पीर जी आप दो सजा के दो। तो जनता को नो दिखाने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि वो कहते हैं मैं तो झूठी अफवाह फैला रखी और कही सिकंदर लोधी को कि वो तो न्यू कह है मैं सिकंदर का गुरु हूं, मुझे कोई नहीं टोक सकता, मैं ऐसे घूमा करूंगा ऐसे करूंगा सारे बुरे कर्म। तो सिकंदर लोधी ने सोचा पब्लिक विशेष तुझे टारगेट बनाओगी, तो उस नादान ने अपने हाथों हथकड़ी लाई उस कबीर परमात्मा के दुनिया न्यू ना कह दे मेरा राज ना भंग हो जाए। ये परीक्षा थी नादानों की और सारे फेल होते चले गए। सिकंदर लोधी ने अपने हाथ से हथकड़ी लाई और गंगा में, और सिकंदर और शेख तकी ने कहा कि इसको गंगा में डालेंगे, गंगा में डबो देंगे, ये डूब के मरने योग्य है। तो कहा कि ठीक है भाई आप जैसे उचित समझो ऐसे कर लो। कबीर परमात्मा को हाथ हथकड़ी, गल में तोक और पैरों में बेड़ी डालकर नौका में बैठा के और उसमें गंगा की बीच धार में जाकर पूरी जो फुल स्पीड वहां पर बहुत तेज की धार होती है मध्य में, वहां जाकर तीन चार अन पकड़ के न्यो पटक दिया और परमात्मा गंगा के पानी के ऊपर विराजमान हो गए और हथकड़ी और बेड़ी अब पर टूट गई। अब वो मर नहीं रहे, वो डूब नहीं रहे। शेख तकी ने कहा इसको पत्थर मार मार कर डबो दो, पत्थर मारे पत्थर निकट भी नहीं जा। फिर आखिर में शेख तकी ने कहा कि इसके गोली मारो तीर मारो। अब गोली मारे तीर मारे कोई तो उड़े फैस हो जा गोली, कई ऊपर न मुंह हो जा, कई इतनी दूर न्यू चली जावे, एक भी परमेश्वर की तरफ गोली नहीं जा रही है, काफी देर लगे रही। फिर क्या कहा कि तोब लाओ तोब, शेख तकी ने तोब मंगवा ली। अरे तेरा गजब ये कर्म ही नो, एक व्यक्ति को मारने के लिए और तुम इतने साजबाज जोड़ रहे हो फिर भी आंख नहीं खुली, ये चीज क्या है? क्या कहते हैं, देखत के तो नैन चश्म यो फेरा मोतिया बिंद रे, ये तो अंधे हो रहे हैं इनका मोतिया बिंद हो गया, इतनी समर शक्ति देखकर भी फिर भी उसको ऐसे ही व्यर्थ समझ रहे थे कि ऐसा वैसा आदमी है, इतना गजब हो। कहते हैं चार पहर तक 12 घंटे ये संघर्ष चला, परमात्मा का कोई आंच नहीं आई, दुनिया चारों तरफ खड़ी खड़ी देखे हो मार दो यूं कर रहे हैं और कुछ नहीं, तस से मस नहीं परमात्मा हो रहे। फिर प्रभु ने देखा कि ये शेख तकी जैसे मूर्ख इन अन्य आत्माओं को भी यहां खड़े रखेंगे। परमात्मा ने डुबकी लगा दी गंगा में, डुबकी लगा दी तो सबने सोचा मर गया डूब गया कटा टंटा चलो। अब सब आगे अथपा मुंह धोके अको तो मर गया। उधर से परमात्मा ने क्या कैसी लीला की कि कबीर साहब के जाकर कबीर साहब रविदास जी की कुटिया में जाकर विराजमान हो गए और उधर से शेख तकी और वहां के लोगों ने कहा जा रविदास जी को बता दो, क्योंकि रविदास जी तो कबीर साहब ने छुटवा दिया था कि इसका दोष नहीं भाई, मैंने ही सब कुछ कहा, यो तो मेरा सेवक है, मेरे कहने तो ये काम कर रहा, और जाके बता दो रविदास को कि कहां वो तू भगवान कहा करता हो तो डूब गया दरिया में, परमात्मा को कौन मार दे। इधर से गए वो देखने के लिए, क्या देखा रविदास जी के कुटिया में बैठकर परमात्मा आराम से अपनी महिमा आप ही गुणगान कर रहा है बैठा बैठा। ऐसे झाकी में कह देखा वो बागले, कहने लगे कोनी मरिया वो तो वो बैठा रविदास के कुटिया में रविदास के घर पे। अब सारे उधर भाग लिए लाबड़दा, वहां देखे तो सचमुच यू बैठा, फिर भाज लिए भाग लिया उधर सिकंदर लोधी की तरफ कि वो तो नहीं मरिया अभी भी जीवित है, अब क्या करें कि उसको लाओ पकड़ के खुन्नी हाथी के आगे डाल दो। शेख तकी ने कहा खुन्नी हाथी से मरवाएंगे सबके सामने, वो तो जल में दूर था इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब हाथ पैर बांध कर परमात्मा के और ऐसे मैदान में डाल दिया, दर्शक चारों तरफ खड़े हैं, और एक ऊंचे मचान पर राजा सिकंदर लोधी और वीर देव सिंह बघेल बैठे हैं। ये वहां यातना देने का एक ऐसा स्थल बना रखा था। एक खुन्नी हाथी को पीलवान के द्वारा लाया गया और उसको मद भी पिला दी गई थी हाथी को, और वो मस्त होकर के परमात्मा को मारने के लिए चला तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने, एक शेर रूप दिखा दिया उसको। ऐसा शेर रूप दिखा दिया जैसे कबीर साहब के पास शेर बैठा है। और तेरा गजबाथी तो उल्टा भाग लिया, लीद करे किलकी मारे। अब वो पीलवान ने सोची तेरी नौकरी गई, भी राजा बैठा सारा काम बिगड़ गया, तो यू कहेगा तूने क्या हैंडल किया इसको। उसके बाले ठोके, हीखों में उसके अंकुश ठोके, फिर वापस करे मुंह परमात्मा, शेर देखते फिर हाथी किलकी मार दे, लीद करे धूम बोझ ली। अब तीसरी बार तुम ऐसे काठी मोड़ माड़ के लाए तो परमात्मा ने सोचा ये जीव को दुखी करेगा पीलवान, तो पीलवान को भी शेर रूप दिखा दिया। वो पीलवान हाथी से तले पड़ गया, देखते शेर की शेर नो बैठा जैसे अभी आया हाथी, तो वो नीचा हाथी कहीं भाग गए। अब राजा ने कहा कि ये कैसा पीलवान था, इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो परमात्मा खड़े हुए, वो हथकड़े बांध रखे थे, वह सब टूट गए बंधन, और खड़े हुए तो सिकंदर लोधी को ऐसा दिखा जैसे ये भगवान ऊपर से लेकर आसमान तक, नीचे से लेकर आसमान तक, इतना लंबा चौड़ा शरीर और तेज नूर निकल रहा परमात्मा का। कलजा कांप गया, कलेजा कांप गया, हृदय कांप गया सिकंदर लोधी का, और सारा कांपता हुआ नीचे उतर काया मचानते और नीचे आकर दंडवत प्रणाम की, मुझे बख्श दो हे अल्लाह की जात, मुझे बख्श दो, मेरे से गलती होगी मैं पहचाना नहीं। परमात्मा कहते हैं तुम पहचानो भी गे नहीं क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मोटी होगी। इस प्रकार परमेश्वर के साथ क्या बताते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनाता हूं। जड़िया तोक जंजीरे गल साहा सिकंदर आप, गरीबदास पदली ने है वो तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी और पग में बेड़ी पर आए, गरीब दास निर्गंग में तांदी ना छटकाए। बीच में ठोक दिया, जड़ गए तोक जंजीरे सब वो लगे किनारे आए, गरीब दास देखे खलक सोका जी बादशाह। नीचे नीचे गंगल गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीब दास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन, गरीब दास का जी कहे ये बांध दिया जलसीन। क्या कहते हैं वह काजी मूर्ख, नो कह इसने जल बांध दिया यहां तो ना डूबता, तुम बैठो नहीं बंदे बंदाए में डूब के देखो इनको में। यानी मानना नहीं हमने उसकी कोई और अटकल बना के और अपनी प्रभुता ऊपर रखी, इसलिए हम फेल रहे। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीब दास जुल दी जब डूबे गंग धार। कहते नहीं डूबे तो उसके गल में भी दोबारा पकड़ के लाए, फिर उसी गले में सिला पत्थर मोटे मोटे बांध कर फिर पटक दिया, वह सिला भी टूट गई और परमात्मा फिर भी बैठे। तीर बाण गोली चले ये तो प्रकले सोरे, गरीब दास जुलहदी के गई एक नहीं ओरे। जुल्म होया डूबे नहीं शस्त्र लगे ना बाण, गरीब दास इस अब कौन गति इसके क्यों कर लवा प्राण। किसको कैसे मारे उम्रता तो सही नहीं, चार पैर गोले बगे वो दमी मुल्क मैदान, गरीब दास पोखर सोखे रहे कबीर अमान। अदर धार गोले बहे वो जल के बीच गभाक, गरीब दास उस दुल्दी पर जुलहदी पर वो शस्त्र छूटे लाख। अब क्या बताते हैं कि ना जाने कितना प्रयत्न किया उन्होंने पर परमात्मा डूबे नहीं। सिंह रूप साहेब भैया वो भाग्य भाग्य उल्टे फील, गरीबदास नहीं समझती ये दुनिया खलील, के परमात्मा को देखकर वो हाथी फील माने हाथी उल्टा भाग गया, अरे नादान दुनिया फिर भी ना समझी रहे, ऐसे चमत्कार देख कर तो चरणा में गिर जाओ, कम से कम इब कोई जादूगर राजा छोटा सा वो भी सोवान प्रभावित कर दे, और परमात्मा ने ऐसी लीला दिखाई फिर भी हमारी अकल ठिकाना आई नहीं, क्योंकि नकली संतों ने नहीं आने दी। बने के हरी जी सिंह जित व चोर शिखर आसमान, गरीब दास हस्ती भाग लख्या देख नहीं जहान, कुटे शीश महावतम अंकु सिर गर पगर गाप, गरीब दास उल्टा भागे वो तारी दीज थाप, बाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाखे, गरीब दास नहीं निकट जावे किलकी देवे लाख, हाथी ने मारन खातर भेज देने लाख किलकी मारे और हाथी उल्टा भागे लीद कर करके। अब क्या बताते हैं, पीलवान देखा तब वो खड़ा केरी सिंह, गरीब दास आए तहां वो धर मौला बहुरंग, उतरे मौला अरसते भाव भक्ति के हेत, गरीब दास तब सहा लख ये श्याम पीठ मुख स्वेत, अंगड़ाई अंगड़ाई जंभाई अंगड़ाई ये लंबे भय दयाल, गरीब दास उस सिकंदर को मानो दर्शा काल। परमात्मा फिर कहते हैं आकर के चरणों में गिर जाता है सिकंदर लोधी और मुझे अक्षमा कर दो, परमात्मा बोला मूर्ख कर रखा अक्षमा तेरे ते, और छोड़ दिया ना बसाई ने बोला भी जाओ तुम कीते ये तो भगवान ना पड़िया है, सिकंदर लोधी ने कह दिया भी तो परमात्मा, और ये सब तू पहले कह देता तेरे भी नंबर पूरे रहे, तेरे काम यही होना था, हम इतने कमजोर हो गए हम भगवान को नहीं महत्व दे पाते, संसारी लोगों को ज्यादा महत्व देते। अब परमात्मा ने क्या सोचा भी ये तो समझने वाले तो हैं को नहीं, आप चला यहां से अब सतलोक चलते हैं, हमारा काम पूरा हो लिया। तो सदगुरु ने कहा कि भी जो काशी के लोग कहते हैं कि मगर मरने वाला गधा बनता है, तो मैं मगर मरूंगा और तुम अपने जंतर मंत्र साथ ले चलियो, और ये जो पामिष्ट हैं या जो ग्रह के हिसाब लाने वाले हैं तुम्हारे पंडित जी वो भी आ जाना साथ, के इस मुहूर्त में इस समय मरने वाला प्राणी कहां जा रहा है। अब इस बात को सुनकर कि मगर मैं शरीर छोड़ेंगे तो वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश जो कबीर परमात्मा की हिंदू राजा शिष्य थे, सैकड़ों हजारों कोई हजार सैनिक लेकर साथ हो लिया कि वहां गुरुजी शरीर छोड़ेंगे तो मैं उनका शरीर लेकर के यहाँ काशी में अंतिम संस्कार करूंगा, कहीं वहां मुसलमानों का हाथ ना लग जाए। उधर जब पहुंचे परमात्मा तो उधर से वहां के बिजली खां पठान भी कबीर परमात्मा के शिष्य थे, ये प्रकरण बीच में सुना नहीं पाया क्योंकि परमात्मा की महिमा अपरंपार है, ये सात दिन में नहीं सात संख दिन में बिना पूरी हुए, पर फिर भी हमने काम चलाओ जितनी हमारी बुद्धि ने काम किया और जितना बच्चे ग्रहण कर सकते थे उतना ज्ञान आपको सात दिन में सुनाने की चेष्टा की है। तो बिजली खां पठान भी उन्हीं परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, उन बहुत बड़ा भयंकर अकाल गिरा था एक बार मगर में, तो सब जंतर मंत्र करने वालों ने हिंदू मुसलमान सब सिखों ने गुरुओं ने कह दिया था कि ये तुम्हारे संस्कार ऐसा ही है या अकाल कई वर्ष गिरेगा, कई वर्ष गिरेगा, वर्षा का कोई संयोग तुम्हारे पुनादार पर नहीं है, परमात्मा ने वहां जाकर वर्षा इतनी गजब की करा दी थी और वो अकाल तोड़ दिया था। तो वहां हिंदू और मुसलमान 50-50 है मगर नगर में, तो सारे के सारे नाम ले लिया था, नहीं तो कति उंगलियां पर जन गणे थे कद मरेंगे, और उसके बाद वो बहुत श्रद्धा से लग रहे थे। तो बिजली खां पठान ने सोच कहा कि भी वीरदेव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर आया है और गुरुदेव का वो शरीर ले जाएगा, तो वहां के लोगों ने कहा कि हम नहीं ले जाने देंगे, हम मुसलमान तरीके से अपने गुरुदेव का अंतिम संस्कार करेंगे, काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे। अब न्यो बांट रखा हमने भगवान भी, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बटा रहे लगाई रे।